और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं है, तुम्हारे किसी बदर घुड़की को डरने वाले नहीं है। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आज इसी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। जेल का जवाब लड़ेंगे। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है, संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। उन्हें यह फिक्र है हर दम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोदी राज में विपक्ष के नेताओं को जेल जाते तो देखा गया है, लेकिन जिस तरह से संजय सिंह तिहाड़ से निकले और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया वैसा कम देखा गया। आम आदमी पार्टी ने भी संजय सिंह की रिहाई को बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब जमानत मिली तब कुछ पत्रकार खबरें प्लांट करने लगे कि आखिर कोर्ट ने जमानत क्यों दी, ये किसी का मास्टर स्ट्रोक है, वही जो इस तरह के फटीचर मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जेल से बाहर आते ही संजय ने इसे अपने और अपनी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया।
और देखो कौन आया, और देखो कौन आया, और देखो कौन आया, और देखो कौन आया।
तिहाड़ जेल से आई पहली तस्वीर में संजय नायक की तरह खड़े नजर आए। यह तस्वीर संजय को एक खास एंगल से ऊंचाई दे रही थी, जिसे इस वक्त आम आदमी पार्टी को जरूरत भी थी। आम आदमी पार्टी के नेता कुर्ता पजामा वाले नहीं लगते, पैंट शर्ट वाले हैं। कम ही नेता हैं जिनकी पहचान पारंपरिक राजनीतिक लिबास से होती है। संजय ने इस मौके को ठीक से राजनीतिक संदेश में बदल दिया। टीवी पर टीआरपी की शान किसी और के लिए सजी थी, उस महफिल में संजय सिंह की तस्वीरें पहुंचने लगी और देर रात सब कुछ संजय सिंह का हो गया। संजय सिंह अपनी बात देश के तानाशाह को पहुंचाने लगे।
और देखो कौन आया, और देखो कौन आया। इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं है। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आज इसी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी, कान खोल कर सुन लो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है।
अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है।
हम इस वीडियो में आज संजय सिंह की दिनचर्या पर भी नजर रखेंगे और उनके भाषण की बात करेंगे। आखिर संजय के भाषण में ऐसा क्या था जिसने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जोश से भर दिया, और इसे अखबारों ने कैसे कवर किया? जब आप इस वीडियो में आगे चलकर देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस भाषण को आपने खुद सुना है, हमारे YouTube चैनल पर भी सुना है, उसके बारे में अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है। मगर आपको वीडियो पूरा देखना होगा, रील के चक्कर में मत रहिए। ऐसे ही आपके लोकतंत्र की रैली निकल चुकी है। केजरीवाल और सिसोदिया के जेल में जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी बिखरी नहीं थी। कहीं से नहीं लगा कि पार्टी खत्म हो गई है। सौरभ भारद्वाज, आतिशी और दिलीप पांडे दिन में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आने लगी। पार्टी के बाकी नेता सड़क पर नजर आए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद रामलीला मैदान की रैली की घोषणा कर दी गई। 7 दिनों के भीतर 31 मार्च को विपक्ष की इतनी बड़ी साझा रैली भी कर दी गई। 21 मार्च से 3 अप्रैल के बीच एक एक पल आम आदमी पार्टी लड़ाई की मुद्रा में रही। तिहाड़ के बाहर भी समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच गए। दिन भर इंतजार करते रहे, मगर रिहाई का वक्त आया देर शाम। यह पोस्टर कार्यकर्ताओं के उस विश्वास को बयां कर रहा था कि संजय भैया झुकेंगे नहीं। जिस दौर में न जाने कितने नेता ईडी के डर से कांपते हुए बीजेपी में भाग लिए, उस दौर में इन कार्यकर्ताओं को इतना भरोसा है कि संजय सिंह झुकने वाले नहीं हैं। इंतजार में शाम रात में बदलने लगी और तभी संजय सिंह बाहर आते हैं, सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए। कार्यकर्ता उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। धक्का मुक्की के बीच कार्यकर्ता संजय सिंह को खींचकर कार के ऊपर चढ़ा देते हैं, और यह तस्वीर उसी समय की है जो 3 अप्रैल की रात ट्विटर पर दौड़ने लगी। 4 अप्रैल की सुबह के अखबार मैनेज से लगे। बहुत कम अखबारों में यह तस्वीर उस तरह से छपी जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। हर पल मीडिया मैनेज होता लग रहा है। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता किसी से मैनेज नहीं हो पाए। कार्यकर्ताओं ने जिसे शेर बुलाया, वो जब पार्टी के दफ्तर पहुंचा तो शेर की तरह ही दहाड़ने लगा। क्या आपने 4 अप्रैल की सुबह का अखबार देखा है? अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि संजय सिंह नाम का एक सांसद 6 महीने बाद जेल से बाहर निकला है। कोर्ट में उसके खिलाफ ईडी पैसा लेने का एक सबूत पेश नहीं कर पाई। उस सांसद के 6 महीने बाद जेल से बाहर आने पर मीडिया कैसे कवर कर रहा है, इस वीडियो को देखिए और घर लौटकर अपने अपने अखबारों को भी। यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसकी पहली खबर ईडी के वकील के बयान के आधार पर है। हेडलाइन है कि आपकी संपत्ति कुर्क कर सकती है ईडी। पहले पन्ने पर संजय सिंह की रिहाई की खबर नहीं है, मगर संबंधित समाचार के तहत पेज नंबर 2 पर जाने का संकेत है। उस दूसरे पन्ने पर संजय सिंह की रिहाई की खबर है, मगर यहां तस्वीर तिहाड़ से बाहर की नहीं बल्कि केजरीवाल के घर के बाहर की है, जब संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल के पांव छुए। अखबार के कुछ स्थानीय संस्करणों में यह फोटो तीसरे पन्ने पर छपी है। अब हमारा सवाल है, मान लीजिए आप संपादक हैं, आपके सामने ये तस्वीर है जिसमें संजय पांव छू रहे हैं और ये तस्वीर जिसमें संजय जेल से बाहर आते हुए ललकार रहे हैं, आप किस तस्वीर का चयन करेंगे? आप तय कीजिए कि दोनों तस्वीरों में से कौन सबसे प्रभावशाली है और आप किसे अपने अखबार में पहले पन्ने पर छापना चाहेंगे। यह इंडियन एक्सप्रेस है 4 अप्रैल का ही, जिसमें संजय सिंह कार पर चढ़े ललकार रहे हैं। उनकी उंगलियों और उनके चेहरे का भाव देखिए। अगर कोई फोटोग्राफर जेल के बाहर कई घंटे से किसी नेता का इंतजार कर रहा है तो वो ऐसा ही फोटो चाहेगा, और कोई भी सजग फोटो संपादक पहले पन्ने के लिए इसी का चुनाव करेगा, जो इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। क्या जागरण के पास यहां की तस्वीर नहीं होगी? या तो जागरण बता सकता है। एक्सप्रेस अंग्रेजी का अखबार है लेकिन हेडलाइन हिंदी में बोल रही है। एक्सप्रेस और जागरण का पहला पन्ना कितना अलग लगता है। अब यह अमर उजाला है, हिंदी का एक और अखबार 4 अप्रैल का ही। इसकी पहली हेडलाइन भी वही है जो दैनिक जागरण की है। हेडलाइन की भाषा तो अलग है लेकिन ईडी के वकील के आधार पर ही खबर लिखी गई है कि ईडी का दावा है कि केजरीवाल के खिलाफ लेन देन के पुख्ता सबूत हैं। अमर उजाला में पहले पन्ने पर किनारे में जेल से बाहर आते हुए संजय सिंह की फोटो छपी है और उनकी रिहाई की खबर भी है, मगर संक्षिप्त रूप में। इंडियन एक्सप्रेस की तरह इस अखबार ने बोल्ड पिक्चर और बड़ी हेडलाइन नहीं लगाई है। गाजियाबाद के इसके स्थानीय संस्करण में पहले पन्ने पर संजय सिंह की अलग फोटो है, लेकिन यह भी कोई बोल्ड फोटो नहीं है। स्थानीय संस्करण के दूसरे पन्ने पर संजय सिंह की क्लोजअप फोटो लगाई गई है और उनके भाषण की कुछ पंक्तियां भी रिपोर्ट हुई हैं। राष्ट्रीय संस्करण के दूसरे नंबर के पेज पर जागरण से बेहतर तस्वीर है, मगर आप देखिए तो यह खबर दूसरे पेज पर भी किनारे लगी है। संजय सिंह के बगल में बड़ी जगह ईडी के बयान को दी गई है, जो पहले पन्ने पर और पहली खबर के रूप में दी जा चुकी है। तो इस तरह आप दैनिक जागरण, अमर उजाला और इंडियन एक्सप्रेस में एक ही घटना की खबरों को जब एक साथ देखते हैं तो आपको वो दिखता है जो नहीं दिखाया जाता। हमने केवल 3 ही अखबार देखे, बाकी आप देख लीजिएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि हर अखबार का संपादकीय विवेक अलग होता है और खबरों के चयन का तरीका भी। विपक्ष इसी तरह से पहले पन्ने से विस्थापित होता रहा है। अगर मैं कह दूं कि आपको हिंदी का अखबार पढ़ना नहीं आता तो आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन यह बात सही है कि बहुत से पाठकों को अखबार पढ़ना नहीं आता है, इसलिए अखबार आपको कुछ भी पढ़ाकर निकल जाते हैं। संजय सिंह को जब जमानत मिली तभी से खबरें प्लांट होने लगी, कानाफूसी के जरिए भी पहुंचाई जाने लगी कि संजय सिंह के साथ कुछ सेटिंग हुई होगी, इसी सेटिंग के तहत सिसोदिया को भी निकाला जाएगा, फिर आप में सत्ता परिवर्तन होगा जो मास्टर स्ट्रोक वाले बाबा के हिसाब से होगा। मतलब हद ही है, जेल भेजो तब भी इनका मास्टर स्ट्रोक, जेल से बाहर कोई आए तब भी इन्हीं की मर्जी और मास्टर स्ट्रोक। इस तरह से ये लोग माहौल बनाते हैं, जैसे संजय सिंह तिहाड़ से निकलकर सीधे बीजेपी में शामिल होने जा रहे थे। रिहाई के दूसरे दिन संजय सिंह राजघाट गए, आम आदमी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान मंदिर भी गए। पहले दिन के अपने भाषण के बाद भी उन्होंने अपनी राजनीतिक सक्रियता बनाए रखी और हर समय आम आदमी पार्टी के साथ ही दिखे। जो लोग आम आदमी पार्टी को बीजेपी का बी टीम बताते हैं, संजय बार बार बताते रहे कि ए फॉर आप पहले आता है, बी फॉर बीजेपी का नंबर बाद में आता है। संजय सिंह ने अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी का भी भरपूर शुक्रिया अदा किया।
हम लोगों ने गांधी जी की समाधि पर यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे राष्ट्रपिता जी, आप जहां कहीं भी हैं इस सरकार को भी सन्मति दें, इस सरकार को भी सद्बुद्धि दें कि वो इस देश के लोगों की आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। आज जिस प्रकार से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, ये तानाशाही की शुरुआत है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को झारखंड में जेल में डाल दिया गया और पता नहीं कितने विपक्षी मुख्यमंत्रियों के लोग पकड़ पकड़ के जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
संजय सिंह के भाषण में कहीं से ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि उसमें बीजेपी के लिए कोई रियायत है। वैसे यह बात ठीक है कि जो लोग कांग्रेस या दूसरे दल में रहते हुए दिन रात बीजेपी और मोदी की आलोचना करते हैं, बीजेपी उन्हें भी ले आती है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड के लिए आप संजय सिंह को सुन सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी की कितनी अच्छे तरीके से तारीफ की है।
मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इनका जवाब देने का वक्त आ गया है। बहुत बढ़िया। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई, गलत तो नहीं कह रहा। भारतीय जनता पार्टी सरसले के पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलेआम खाई है। किससे खाई है, किससे खाई है? शरद रेड्डी से, शराब के कारोबारी से। और उसके बारे में लिखा गया किंग पिन, तो भाजपा ही पहुंचे बोले रिश्वत देनी है। उसने कहा मैं तो किंग पिन हूं, तो उसने कहा 55 करोड़ का पिन गाड़ो, हम तुम्हें किंग बना देंगे। उसने 55 करोड़ का पिन गाड़ा, भाजपाइयों ने गड्डी गिनना शुरू किया, उसको कहा तुम तो किंग हो, किंग हो, किंग हो, शरद रेड्डी जिंदाबाद। तो शराब घोटाला किया है किसने, किया है किसने, किया है किसने, किया है किसने, किया है भाजपाइयों ने किया है।
जिस अंदाज में संजय सिंह जेल से बाहर निकले और 3 अप्रैल की रात भाषण दिया, उससे सारी अफवाहें और आशंकाएं अब समाप्त हो जाती हैं। संजय सिंह जेल से निकलते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर गए और उनके भाषण में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया प्रमुखता से छाए भी रहे। केवल केजरीवाल और सिसोदिया ही नहीं, वे अपने भाषण में एक एक विधायक और कई कार्यकर्ताओं का भी नाम लेते रहे। इस बात को लेकर सजग थे कि किसी का नाम न छूट जाए। जेल से बाहर आते ही संजय पहले केजरीवाल के घर गए और आज सुबह मनीष सिसोदिया के घर गए, उनकी पत्नी के पांव छुए। यह सब बता रहा है कि जेल के भीतर रहने के बाद भी पार्टी के नेता एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। ईडी पर आरोप लगता है कि वह विपक्ष की पार्टी तोड़ने और पार्टी से नेताओं को भगाकर बीजेपी में लाने का काम करती है, लेकिन इधर आम आदमी पार्टी में कुछ और दिख रहा था।
इस आम आदमी पार्टी को अपना परिवार मानते हैं हम लोग, ये हमारे लिए परिवार है, परिवार। और इसलिए जेल से छूटा तो अपने परिवार से मिलने बाद में गया, पहले अरविंद केजरीवाल जी के भाभी के पास गया मिलने के लिए। मनीष भाई के भी घर जाऊंगा और सत्येंद्र भाई के भी घर जाऊंगा, ये हमारा परिवार है। और अगर हमारे परिवार पर कोई संकट आएगा तो एक एक कार्यकर्ता सीना तान के अपने नेता के साथ खड़ा रहेगा। मैंने आज भाभी के आंखों में पहली बार आंसू देखा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन आंसुओं का बदला ईश्वर लेगा, इन आंसुओं का बदला दिल्ली की 2 करोड़ जनता लेगी। और मैं इस देश की जनता से और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, इन तानाशाहों से सावधान हो जाओ, ये किसी के लिए अच्छे नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, कान खोल कर सुन लो, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है।
संजय सिंह का भाषण केवल संजय सिंह का नहीं था, वे अपने भाषण में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उठी बहस का भी जवाब दे रहे थे। केजरीवाल से इस्तीफे की मांग को उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया, कहा कि जो पैटर्न है उससे तो हर किसी को गिरफ्तार करने के बाद बीजेपी हर किसी का इस्तीफा लेने बैठ जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि अगर तमिलनाडु में, बंगाल में कोई मुकदमा लिखवा दे, वहां से कोई दरोगा पूछताछ करने दिल्ली आ जाए, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांच में शामिल होंगे?
इस्तीफा दे दो भाई, कल को भगवंत मान को गिरफ्तार कर लो, कह दोगे इस्तीफा दो। वो केरला के मुख्यमंत्री विजयन, उनकी बेटी पे जांच शुरू कर दी, कहेंगे विजयन जी इस्तीफा दो। ममता बनर्जी जी के भतीजे पे जांच शुरू कर दी, कहेंगे ममता बनर्जी जी इस्तीफा दे दो। तो इस देश के कानून में कहते हो मुख्यमंत्री और आम आदमी बराबर है, तो जरा मुझे बताइए, सोमनाथ भारती कानून के जानकार हैं, क्या प्रधानमंत्री को कानून में छूट है? कानून में छूट है क्या? छूट है क्या? अरे कल को एक मुकदमा मोहाली में लिखा जाएगा, दो दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा झारखंड में लिखा जाएगा, तीन दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा तमिलनाडु में लिखा जाएगा, पांच दरोगा वहां से आएगा और पांच मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगी तो दस दरोगा वहां से आ जाएंगे, दस दरोगा आ जाएंगे और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा, कहेगा नरेंद्र मोदी जी घर पे हैं, तो भाजपाइयों जवाब दो इसका, क्या देश का प्रधानमंत्री बंगाल के थाने में जाके जांच में शामिल होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे, जवाब दो इसका, क्या वह शामिल होगा तमिलनाडु की जांच में, क्या वह जांच में शामिल होगा पंजाब के अंदर, दरोगा डीएसपी एसपी इन्हीं विपक्ष के राज्यों से, रेवंत रेड्डी के राज्य से, सिद्धारमैया के राज्य से पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के घर में, बोले अमित शाह है, उससे पूछताछ करनी है, कहेंगे हम तो गृह मंत्री है, बोलो गृह मंत्री तो सब समान है, इसलिए भाजपाइयों ये नौटंकी हमारे साथ मत खेलो, तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की दो करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। दिल्ली की दो करोड़ जनता के लिए काम करेंगे।
181 दिनों की जेल के बाद कोई भी तल्ख हो सकता था, लेकिन संजय सिंह राजनेता बने रहे, वे जेल में बिताए अपने दिनों का रोना नहीं रोए। प्रधानमंत्री मोदी की तरह गिनकर उन्होंने नहीं बताया कि 140 गालियां दी गई हैं या गालियों की संख्या 142 है। संजय ने इस तरह की कोई बात नहीं की कि जेल में जो रोटियां मिली वो जली हुई थी या सुपर क्वालिटी की थी।
लेकिन इन 181 दिनों में, इन 181-182 दिनों में मैं बड़ा परेशान हुआ एक चीज सोच के, जेल के कष्ट से नहीं, याद रखना, जेल तो मैं भाजपाइयों से कहता हूं जेल और ये लाठी, ये मुकदमे का डर, ये बंदर घुड़की किसी और को दिखाना, आम आदमी पार्टी वालों को।
ईडी की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विधानसभा में संयमित और जोरदार भाषण दिया। सरकार जाने के बाद तेजस्वी यादव ने भी अच्छा भाषण दिया, लेकिन संजय सिंह का भाषण सुनकर लगा कि जेल में वे इसी दिन के लिए अपना भाषण लिखते रहे होंगे। बहुत सारे नारे भी लिखकर लाए थे। 3 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी कि किस तरह विपक्ष के 25 बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई आईटी कार्रवाई करती है, वे बीजेपी में आते हैं और कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। लगता है संजय सिंह सुबह का यह अखबार भी पढ़कर आए थे। संजय ने भी अपने भाषण में बीजेपी के घोटालों की पूरी लिस्ट पढ़ डाली और उन सब का नाम लिया जिन पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वे अब बीजेपी में पदाधिकारी बन गए हैं।
कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को शामिल करूंगा। मुझे आतिशी जी भाजपा के कार्यकर्ताओं पे बड़ी दया आती है, सौरभ भाई बहुत दया आती है, बेचारे आसाम में तैयार हुए, वाटर घोटाला बुकलेट तैयार की, लाठी से उसको 6 महीने तक बांटा कि ये हेमंत विश्व शर्मा का भ्रष्टाचार है, हेमंत विश्व शर्मा का भ्रष्टाचार है, लाठी खाए, जेल में गए। गोपाल राय जी क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हेमंत विश्व शर्मा को गले लगा रहे थे। वो रोने लगा, उसने कहा अरे इसने तो वाटर घोटाला किया है। बोले कुछ नहीं, अब हमारा भाई है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद कह लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चक्की पिसिंग। सारे भाजपाई कार्यकर्ता लग गए बेचारे, कहने लगे मोदी जी कह रहे पिसिंग तो पिसिंग करेगा, अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया। पिसिंग पिसिंग की जगह कहने लगे मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। फिर कहने लगे हसन मुशरिफ चीनी घोटाला किया 100 करोड़ का। फिर कहने लगे छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन का घोटाला किया है। और तो और ये भाजपाइयों इनको शर्म नहीं आती, कहते राष्ट्रवादी हैं, कह रहे थे आदर्श घोटाला किया है, हमारे जवानों का पैसा खाया है, ये किया है वो किया है। आदर्श घोटाले के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता लाठी का रहा था, आदर्श घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठा के राज्यसभा में भेज दिया भाजपाइयों ने। भाजपाइयों ने अशोक चौहान को भेज दिया, वहां गए कहने लगे शारदा स्कैम किया, नारदा स्कैम किया, मुकुल राय सुबंधु अधिकारी को भाजपा में शामिल कर लिया। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी। मैं भाजपाइयों के लिए मैंने बोला गोपाल भाई, भाजपाइयों के लिए नारा बनाया स्पेशली, जेल में खाली थे कुछ तो काम करना था, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी।
संजय सिंह के जेल जाने से अदाणी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब करीब बंद ही हो गई। वे विपक्ष के उन नेताओं में से थे जिन्होंने संसद के भीतर और बाहर लगातार अदाणी मामले का मुद्दा उठाया। अदाणी पर बोलने वाले राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, महुआ मोइत्रा का सदन से निष्कासन हो गया और संजय सिंह जेल चले गए। क्या ये संयोग था? इन सब ने अपने जेल जाने के या सदस्यता रद्द किए जाने के कारणों के पीछे अदाणी के खिलाफ बोलना भी बताया है। जेल जाते वक्त संजय सिंह ने कहा था कि अदाणी पर बोलने की सजा मिल रही है, इसी कारण उनके पीछे ईडी लगा दी गई है।
मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई।
सुना हूँ कि मैं अडानी के घोटाले को खोलने में लगा हूँ, अडानी के घोटाले को खोलने का काम जारी रखूंगा। आप लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए। अपने चेले अडानी को भी बता दीजिए, उसको भी बोलिए कान खोलकर सुन ले। अपनी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारी जांच एजेंसियों को बता दीजिए, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। अडानी के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा। आपने महाघोटाला किया है, उसके बदले में आप और आपकी पार्टी और आपकी जांच एजेंसियां मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें, उसकी कोई चिंता नहीं है। और जहां तक मेरे अपने जीवन का सवाल है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जीवन जिया हूं, आकाश से लेकर पाताल तक जांच कराओ, जितनी हिम्मत और जितनी एजेंसियां हैं तुम्हारी जांच कराओ, कुछ भी अगर मिल जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में जो सजा लिखी हो उससे 10 गुना ज्यादा सजा दो, मैं कह रहा हूं। लेकिन अडानी के घोटाले पर छोड़ूंगा नहीं।
संजय सिंह के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी को एक नेता मिल गया है। केजरीवाल और सिसोदिया के जेल में जाने से जो खालीपन आया था उसे संजय सिंह ने एक भाषण से भर दिया। संजय सिंह के भाषण में तैयारी भी नजर आ रही थी, उन्होंने कानूनी पहलुओं का भी ध्यान रखा और कहा अपने केस पर तो नहीं बोल सकते, जमानत की शर्तें ऐसी हैं, मगर सिसोदिया और केजरीवाल के केस पर बोल सकता हूं। जमानत की शर्तों के अनुसार संजय दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में ही बोलकर अपनी बात देश भर में पहुंचा सकते हैं। अखबार उठाइए तो लगता है विपक्ष की सारी रैलियां ईडी के आसपास हो रही हैं। इस चुनाव में मोदी से ज्यादा ईडी की बात होने लगी है। मार्च का महीना बीत गया, अप्रैल के 4 दिन बीत गए, देश की जनता को जानने का वक्त ही नहीं मिला कि 10 साल में क्या हुआ। बीजेपी 2047 की बात करने लगी है ताकि पता ही नहीं चले कि पिछले 10 साल में क्या हुआ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।